मेरे साथ मिलके इस दीपावली का जो बड़ा पवित्र मंत्र है साथ बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतांगमय। हे परमात्मा, हमें झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो दीपावली है, ऐसे कल हमने चर्चा की, ये बड़ा ही प्राचीन भारत के जितने भी जो वैदिक धर्म के जितने प्राचीन त्योहार है, उन सबसे प्राचीन त्योहारों में ये एक है। जब शारदीय फसल, जिसको आप कहते हैं ऑटम हार्वेस्टिंग, बारिश में जो उगाए जाते हैं फसल, वो जनरली इन्हीं दिनों फसल आ जाते हैं घरों में। दो तीन तरह के फसल होते हैं, एक सर्दी के फसल जो आपको गर्मी में आ जाते हैं जनवरी फरवरी तक, जिसमें आप होली मनाते हैं। तो दिवाली, ये वो जो ऑटम हार्वेस्टिंग है, जो शारदीय फसल है, उसके आने के पर खुशी मनाने का त्योहार था। और जैसे कल आपने सुना था, जो पूरे साल भर में जो सबसे अंधेरी रात होती है, वैसे तो अमावस्या की रात अंधेरी रात होती है, पर जो कार्तिक मास की अमावस्या है, उस पूरे साल भर की सबसे गहरी अंधेरी रात होती है। और अंधेरी रात में हम प्रकाश डालते हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो पुराने वैदिक धर्म जिसको हम कहते हैं, उनका हमेशा ये रहा है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। तो दीपावली उस प्रकाश पर्व है, और ये मंत्र उसी से जुड़ा हुआ है। और अंधेरा क्या है? जो भी अज्ञान है, अन्याय है, अत्याचार है, मृत्यु है, जो बुरा है, वो सब अंधेरा है, और जो अच्छा है वो सब प्रकाश है। और हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, अंधेरा है, वो सब अज्ञान के प्रतीक है। अज्ञान उनका मूल है, इग्नोरेंस उनका मूल है। और जो भी प्रकाश वाले चीजें हैं, आपके सुख है, अमृत है, ज्ञान है, धन है, ये सब ज्ञान उनका मूल है, नॉलेज उनका मूल है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर, झूठ से सत्य की ओर जाने का नाम ये दीपावली है। पर आर्य समाज के लिए दीपावली का जो और एक महत्व है, स्वामी दयानंद का जो निर्वाण है, जो वो मृत्यु को प्राप्त हुए दिवाली के दिन था, शायद दुनिया में ये पहले कोई धर्माचार्य हैं जिनको मारा गया, और उनके बाद जिसको मारा गया वो भी आर्य समाज के दूसरे कर्णधार थे, स्वामी दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद। क्योंकि जब भी आप नदी के स्रोत के खिलाफ जाते हैं, अपोजिट फ्लो में जाते हैं, तो आपको बड़े सारे विरोध करना पड़ता है। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार इनको मारने की कोशिश की गई स्वामी जी को, तलवारों से, जो हाथिया सांड को दवाई खिला करके पागल करके, डंडों से, वो राजा लोग छोड़ते थे, पहलवान छोड़ के, कितने बार जहर पिलाया गया। पर इनका अपना ब्रह्मचर्य और प्राणायाम बहुत उच्च कोटि का था, तो थोड़ा बीमार पड़ते थे, ठीक हो जाते थे। अंतिम बार उनको वो जहर में कांच को पीस करके मिलाया गया, और दूध के साथ उनके नौकर को खरीद के उनको दिया, वो नौकर के को खरीद लिया पैसे देकर, और जो उनके घर में जो सेवा करता था, तो उसके द्वारा उनको वो दूध पिलाया गया। तो वो कांच के कारण पूरे जो उनकी नस नाड़ियां हैं, वो सब में कांच की पीस चली गई, वो काफी दिनों तक बीमार रहे। जब उनको पता चला कि ये उनके नौकर ने किया है, वो नेपाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम जगन्नाथ था, तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, बोले तुमने ये किया है। तो उसने बेचारा सीधा साधा था, लालच में किया था, तो पैरों में गिर गया, बोले मेरे माफ कर लीजिए मैंने किया है। बोले अरे बेवकूफ, तू मुझे मारने के बाद जहर पिलाने के बाद यहां क्यों टिका हुआ है। जितना उनके घर में पैसा, स्वामी जी के पास जो भी पैसा फैसा जो कुछ भी था सब बटोर करके उसको दे दिया। बोले जल्दी जल्दी भाग जाओ, नहीं तो लोगों को पता चलेगा तो लोग मार डालेंगे, अपना घर देश भाग जाओ। अपने हत्यारे को सारा पैसा दे करके वो भेज दिया कि तू चले जा। स्वामी जी की क्या खास बात है, उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज के दिन। जब हिंदू धर्म, जैसे हमें पता है, भारत कम से कम 1000 सालों से गुलाम रहा, कभी शक, हूण, पठान, मुगल, बाद में ब्रिटिश, बहुत सारे एरिया पर्तुगीज और डच, किसी ना किसी रूप में हम 1000 साल तक गुलाम रहना छोटी बात नहीं होती है। तो हजारों सालों में पूरे जो हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान की जो प्रकृति है, वो गुलाम स्वभाव की बन गई। पर क्योंकि भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति, वो धर्म है, वो आम लोगों के खून में होता है, उनका शास्त्र जो है वो किताबों में नहीं होता है, वो श्रुति परंपरा में होती है, लोगों के दिमाग में होता है। इसीलिए हजारों सालों के गुलामी और अत्याचार के बावजूद भी ना हमारे शास्त्र बर्बाद हुए, ना हमारी संस्कृति बर्बाद हुई, दुनिया का कोई देश नहीं बचा। आपको पता है पूरा यूरोप क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन नहीं था, उनकी अपनी संस्कृति, पूरा अरब इस्लाम बन गया, पूरा अफ्रीका जो बाद में यूरोपियन लोगों के और इस्लाम लोगों का वहां प्रवेश हुआ, या तो इस्लाम बना या क्रिश्चियन बना। अरे ये इससे पहले ऐसा नहीं थे, सिर्फ 50 साल 25 साल के गुलामी के बाद पूरा का पूरा देश कन्वर्ट हो जाता था। दुनिया में ये अपने आप में अजूबा है कि 1000 साल तक अलग अलग लोगों के कोशिश करने के बावजूद, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं या वैदिक धर्म, वो बना रहा। उसकी संख्याओं में कम जरूर हुई, लोगों के मानसिकता में बदलाव जरूर आया, पर वो आज भी उसी रूप में है जैसा 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, या जो हमारी हिंदू मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ये हिंदू धर्म है, जिस रूप में था आज भी उसी रूप में है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, पर उसका जो बेसिक फॉर्म है, जो उसका जो आधारभूत रूप है, वो नहीं बिगड़ पाया। पर प्रभाव तो पड़ा 1000 सालों के गुलामी के कारण। हमारे अंदर बहुत सारे वो दासता की प्रवृत्ति आई, दासता मतलब स्लेवनेस, जो अपने आप को छोटा समझना, दूसरों की तुलना में दूसरों के जी हजूरी करने में खुशी महसूस करना, ये दासता का लक्षण होता है, ये हमारे अंदर आया। और उसी के साथ साथ हमारे धर्म में बहुत सारे विकृतियां भी आई। हमें लगा इन विदेशियों के कारण हम सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, ये नहीं होते तो हमारा क्या औकात होता, हम तो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह भावना भी आई हमारे अंदर। और इसी के साथ साथ ये भावना भी बनी रही हमारे धर्मों के नाम पर, हम जातियों में टुकड़ों में बंटे रहे, आज भी बंटे हुए, पढ़े लिखे लोग हो गए, अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं, बड़ा फैशनेबल समझते हैं, पर जात के नाम पर आज भी कट्टर हैं। कुछ बुराइयां आने लगी और वो बुराइयां इतनी खतरनाक हुई कि पूरा हिंदू समाज आज तक उस कोढ़ से, बीमारी से ग्रस्त है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। किसी दिन सोने का चिड़िया कहलाने वाला भारत धीरे धीरे गरीबी में, अनपढ़पन में, अंधविश्वास में भर गया, खास करके धर्म के नाम पर जिस तरह की विकृतियां हमारे समाज में थी उनके खिलाफ स्वामी जी ने संघर्ष किया। हिंदू अपने शास्त्रों को भूल गए थे, ना उनको वेद उन्हीं का शास्त्र है, ना वेद उनको पता, ना उपनिषद, ना दर्शन, ना वे गीता, उनको बस हिंदुओं को सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा था। और आज भी करोड़ों हिंदुओं को भरोसा है, उनके घर में जो पंडित आता है, अनपढ़ और अधपढ़ पंडित, जो खुद के इतने गंदे कपड़े पहनकर आता है, जिसके नाक से अगर पानी निकलता है तो उसी में पहुंचता है और उसी में खाना खाता है, वो दूसरों को प्रवचन देता है और हम उसी को गुरु मान के बैठते हैं। वो अनपढ़ पंडित पूरे समाज को कब्जा करा। हम तथाकथित पढ़े लिखे ऊंचे पोस्ट पर बैठने वाले लोग उन अधपढ़ और अनपढ़ पंडितों की बात को मानते हैं और आज भी मानते हैं। हम दुनिया में हर चीजों पर सवाल उठाते हैं, $5 की चीज को कोई $6 ले तो सवाल उठाते हैं, हमारे घर अगर बाएं नहीं दाएं हुआ तो हम सवाल उठाते हैं, गाड़ी कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में चलाते हैं आपके पास ठोकता है तो हम सवाल उठाते हैं, हर चीज पर हम सवाल उठाते हैं, इलेक्शन में हर नेता पर सवाल उठाते हैं। पर पंडित जी अगर कह देते हैं ये दिन नहीं रात है, ये शुक्रवार नहीं है शनिवार है, तू जिंदा नहीं तो मुर्दा है, तू मुर्दा नहीं तो जिंदा है, हम उसमें सवाल नहीं उठाते हैं। हम ईश्वर पर सवाल उठाते हैं, ध्यान रखिए ये हिंदुओं की बीमारी है। हम भगवानों पर सवाल उठाते हैं, हम कभी कभी मानते नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है, पर पंडित जी ने अगर बोला कि भूत तेरी बेटी पर चढ़ी हुई चढ़ा हुआ है और उस बेटी को मार देना चाहे क्योंकि वो डायन है, तो हम उसको मार डालते हैं और आज भी मारते हैं। आप मत समझिए कि हिंदू सुधर गया। मैं दिल्ली में जब था, मेरे नीचे जो किराए पर रहता था तो नीचे एक बिहार के परिवार रहते थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उनकी पत्नी को दौरा पड़ता था कभी कभी, बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, तो जब भी दौरा पड़े वो उसको झाड़ुओं से पीटते थे और गरम लोहा गरम करके दागते थे और वो बेचारी चिल्लाती थी, चीखती थी, उसको पीटते थे। तो एक दिन मैंने पूछा क्या, बोले इसको डायन चढ़ जाती है। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग, ये 2000 की सदी में, मैंने कहा ये बीमारी है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बोले नहीं, ये डायन चढ़ता है, हमारे गांव में ऐसे ही महिलाओं को चढ़ती रहती है, उनको झाड़ुओं में पिटना पड़ता है, उनको वो दाग देना पड़ता है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, अंधविश्वास का, धर्म के नाम पर होने वाले बुराइयों का जो सबसे ज्यादा असर होता है महिलाओं पर होता है। पर यह भी मानिए कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा अंधविश्वास को फैलाते हैं और सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ता है। ये पुरुषों का चक्रांत कह सकते हैं, अब स्त्री की नासमझी कहे या पुरुष की चक्रांत है। सीता अनुसुईया का पाठ महिलाएं ही अपनी बेटी बहुओं को पढ़ाती है, पर कोई महिला अपने बेटे को नहीं पढ़ाती है कि राम जैसा एक बीबी वाला बनो, पर बेटी को जरूर पढ़ाते हैं सीता जैसा एक पति वाला बनो, बलिवान बनो। मतलब धर्म के नाम पर महिलाएं महिलाओं, पुरुष तो करते ही करते हैं, नहीं पुरुषों का काम ही है महिलाओं को दबा के रखना, पर महिलाएं भी अपने नेचर से अपनी महिलाओं को दबा के रखते हैं। ये जो परिवार से लेकर पूरे देश तक हम एक दबे कुचले स्वभाव के थे, स्वामी जी ने उन बुराइयों के ओर नजर डाला अपने आप को सुधार करने के लिए। वैसे तो हिंदुओं में बहुत सारे सुधारक आए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, तुकाराम, और हर राज्य में अपने अपने ढंग से आए, पर या तो वो पश्चिमी के पढ़ाई लिखाई से इतने थे, उनको हिंदू धर्म से कम पसंद आता था। वो चाहते थे हिंदुओं में सुधार तभी होगा जब सारे हिंदू ईसाई बन जाएं या पैंट शर्ट पहन ले या मॉडर्न हो जाएं, अंग्रेजी बोलने लग जाएं। अकेले एक ब्राह्मण, ये पूरे इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी ब्राह्मण ने पहली बार बोला कि वेद पढ़ने में सबका अधिकार है। मतलब आप पता नहीं कितनी गहराई से हिंदुओं हिंदुइज्म को जानते हैं, आज भी भारत में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे क्षेत्रों में स्त्रियों को और छोटे जात के लोगों को गायत्री मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं है, आज भी नहीं है। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। वेद तो दूर की बात है, संस्कृत बोलने का पढ़ने का अधिकार आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं है। मैं जब 8-10 साल तक एक संस्कृत प्रचारक के रूप में काम करता था एक एनजीओ में, तो हमें पता चला एक बड़े, क्योंकि हम लोगों से मिलते जुलते थे, एनजीओ था तो उन दिनों बीएसएफ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत का बहुत सबसे बड़ा सेमी आर्मी जो पारा मिलिट्री फोर्स है उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो बड़े संस्कृत के प्रेमी थे, विद्वान थे। हमें पता चला तो जो पता लगता है हम मिलने जाते अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, तो बातचीत हुई। जब पता चला कि हम लोग संस्कृत प्रचार करते तो उन्होंने बोला कि आप किसको सिखाते हो, तो हमने कहा हम स्कूलों में कॉलेजों में पार्क में कहीं भी जहां 10-20 लोग हो जाते हैं हम वहां सिखाने शुरू कर देते हैं। बोले मतलब तुम लोग उनको भी सिखाते हो जो छोटे जात के लोग हैं? बोले हाँ। बोले भागो यहां से। इतना अधर्म करके मेरे पास आते हो, शर्म नहीं आता है ब्राह्मण होकर के उनको संस्कृत सिखाते हो, देश भ्रष्ट करते हो धर्म भ्रष्ट करते हो। बोले संस्कृत प्रचारक को बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल है, कितना मॉडर्न अंग्रेजी बोलता है तो ऐसा लगता है सीधा जैसे ज्ञानों को पी रखा है। मतलब मूर्खता कितनी भरी हुई है। इसीलिए हिंदू उन्नति नहीं कर पाता है, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, स्त्रियों के नाम पर, इस तरह के जो धर्म में हमारी कुरीतियां बुराइयां आई उसके खिलाफ स्वामी जी ने संघर्ष किया। 1824 में उनका जन्म हुआ और 1883 को उनका देहांत हुआ। मैं उनके जीवनी पर ज्यादा प्रकाश आज न डाल के मैं थोड़ी बहुत आज आपको जो आर्य समाज क्या मानता है, स्वामी जी का क्या विचार था, उन पर छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि संख्या कम है तो थोड़ी थोड़ी आपको यह भी पता चले कि हम आर्य समाज में आते हैं तो आर्य समाज क्या मानता है, उसकी मान्यताएं क्या है। पहली बात, ईश्वर एक है। आर्य समाज मानता है ईश्वर एक है, जिसको आप गॉड कहें लॉर्ड कहें उनके अलग अलग नाम है। जितने भी हिंदुओं में हमारे नाम है, गणेश इंद्र रुद्र वरुण शिव वगैरह, सब परमात्मा का नाम है, उसके अर्थ अलग अलग है। गणेश क्यों कहा गया ईश्वर को? वेदों में आता है गणेश, ऐसा नहीं कि कोई नया शब्द है। तो गणों का ईश है, ईश कहते हैं रूलर मास्टर, जो समूह का एक ग्रुप का लीडर है। वो इंद्र क्यों है? क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है। वो वरुण क्यों है? क्योंकि फैला हुआ है। वो विष्णु क्यों है? क्योंकि वो व्यापक है। वो शिव का मतलब क्या है? वो मंगलकारी है। रुद्र मतलब क्या है? रुलाने वाला है। वो दुर्गा मतलब क्या है? जो दुर्गम है, जो बड़े मुश्किल से पाया जाता है। तो जितनी भी देवताएं हमारे, जिनको हम बाद में अलग अलग रूपों में जाने, वो उस एकमात्र परमेश्वर का अलग अलग नाम है। आर्य समाज मानता है कि जीवात्मा जो मैं आप हैं, पेड़ पौधे प्राणी हर जगह है, वो अनेक है। ईश्वर एक है पर हम अलग अनेक है। पुनर्जन्म कर्मों और कर्म सिद्धांत जो हर हिंदुओं का भी मूल सिद्धांत है कि हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हैं, जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है, जो फल आज नहीं मिलता वो कल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में। मृत्यु और जन्म ये पड़ाव मात्र है, आत्मा अजर अमर नित्य है, शरीर बदलता है, आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है, इसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। आर्य समाज मानता है कि दुनिया में तीन चीजें नित्य है, इटर्नल है, परमात्मा, आत्मा, आप और मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरा शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं मरती है। तीसरा ये जो जो यूनिवर्स है, जो संसार है, इस संसार का जो सटल फॉर्म है, जो अनुरूप है, वो नित्य है। ये इसका ग्रॉस फॉर्म में, इसके जो बाह्य रूप में वो अनित्य है, पर उसके अनुरूप में, सटल फॉर्म में ये नित्य है। आर्य समाज मानता है हर विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का, अपने इंद्रिय नियंत्रण की जरूरत है। आर्य समाज का जो ज्यादा लोगों को पता है वो मूर्ति पूजा के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये ठीक है। आर्य समाज मूर्ति कला का प्रशंसक है, मूर्ति कला का, इट्स ए आर्ट। पर मूर्ति को पूजना हम इसलिए नहीं मानते, हमारा मानना होता है आर्य समाज का कि ईश्वर सब जगह है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। पूजना है तो कहीं भी पूजिए, रोड पर भी पूज सकते हैं, घर में भी पूज सकते हैं, ऑफिस में भी पूज सकते हैं। पूजने के लिए उसको कोई जगह की जरूरत नहीं है, अंदर अनुभव करने की जरूरत है। आर्य समाज का मानना था कि जब हम ईश्वर के लिए घर बनाते हैं तो उससे लोगों को लगता है कि जो अच्छा काम है, जो धर्म की बातें, वो मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में ईश्वर है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, दुकान में सारा हेराफेरी करते हैं, ऑफिस में जितनी गड़बड़ी करना है करते हैं, घर में जो कुछ करना है करते हैं, रास्ते में जितनी गालियां देना है देते हैं, पर मंदिर आकर ऐसा कुछ नहीं करते। ये मंदिर है, मंदिर में मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मंदिर में ऐसा मत बोला करो, ये भगवान का स्थान है, मंदिर में मांस मत खाया करो, मतलब रोज खाओ पर मंदिर में मत खाओ। मतलब जो सो कॉल्ड लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं कि ईश्वर सब जगह है, मंदिर में भी है, मंदिर में क्यों ना पूजें, पर हुआ क्या, लोगों को मैसेज गया कि मंदिर में ही ईश्वर है, इसीलिए झूठ यहां नहीं बोलेंगे, बस आप मंदिर के बाहर निकलो मैं तुम्हें देख लेता हूं। आर्य समाज चरित्र पर जोर देता है, आचरण पर जोर देता है कि अगर तुम अपने आचरण से शुद्ध हो, पवित्र हो, सच बोलते हो, अंदर से साफ है तो विनम्र हो, तुम ईश्वर को भक्ति करते हो, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा मन तुम्हारे लिए मंदिर हो गया। इसीलिए हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। आर्य समाज के विचार में स्वर्ग और नरक क्या है यह जानना बड़ा जरूरी है। स्वर्ग का अर्थ होता है जहां सुख मिले, नरक का अर्थ होता है जहां दुख मिले। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, नरक कोई नीचे नहीं। हां यह भी एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदुओं में यह आर्य समाज के विचार में, यह हिंदुओं की बड़ी सोचने की जरूरत है। वो ऊपर वाला हिंदुओं में कंसेप्ट कैसे आया मुझे नहीं समझ, ये इस्लाम कंसेप्ट है ऊपर वाला। कोई हिंदू कभी नहीं बोलता ईश्वर ऊपर है, वो कैसा भी हो, मतलब किसी तरह का हिंदू हो। हर हिंदू बच्चा बच्चा क्या बोलता है, ईश्वर सब जगह है। हम अपनी भाषाओं की कैसे कंट्राडिक्शन लाते हैं देखिए। हर आदमी बोलता है ईश्वर सब जगह है, हिंदू बोलता है, बाकी लोग नहीं, पर बातचीत में हम बोलते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले इस्लाम कॉन्सेप्ट है, इस्लाम मानता है कि ईश्वर ऊपर है, क्रिश्चियनिटी मानता है ईश्वर ऊपर है, कोई हिंदू नहीं मानता ईश्वर ऊपर है। हर हिंदू मानता है कि ईश्वर सब जगह है, मेरे में हमें, तो तभी तो हम नमस्ते करते हैं सबको, क्योंकि सबके अंदर उस ईश्वर की सत्ता को अनुभव करते हैं। हम बड़े बहुत सारी चीजों में हम खुद ही फंसे हुए हैं कंट्रडिक्शन में। ऊपर वाला मतलब फिर नीचे नहीं है ना, वो फिर ना मेरे अंदर है, ना तुम्हारे अंदर है, ना पेड़ में, ना तो फिर तो वो हिंदू कंसेप्ट ही नहीं रहा। बहुत सारी चीजें कभी चर्चा आएगी, हम चर्चा करेंगे। हिंदुइज्म जो आज है वो बेसिकली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का 50% जो आज की हिंदुइज्म है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। आपको नहीं पता कि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर आप कितने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं आज हिंदू। जैसे भूत प्रेत मानना, अभी आएगा वो प्रसंग। तो स्वर्ग सुख है। स्वर्ग कब मिलता है? जब अच्छा काम करते हैं, धर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है। मतलब अच्छा काम करने से सुख मिलेगा, बुरा काम करने से दुख मिलता है। आर्य समाज मानता है स्वर्ग और नरक यहीं पर, हम अपने इसी शरीर में भोगते हैं मरने के बाद दूसरे शरीर। मान लीजिए मेरे बुरे कर्मों के कारण मैं कुत्ता बन के पैदा होता हूं, गली का कुत्ता, सुअर बन के पैदा होता हूं, तो नरक तो हुआ ना, कितना दुख होता है। ऐसा कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। और आर्य समाज एक भूत प्रेत पर भी, जैसे मैंने अभी कहा ये भूत प्रेत बेसिकली जो 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 अब्राहिम जो रिलीजियन है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो यहूदी, ये इनका कंसेप्ट है, हिंदुओं का नहीं है। पर हमने इसको अडॉप्ट किया, कब किया, क्या क्या है, वो अलग से किसी दिन बड़े डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे तब आपको समझाएंगे। भूत का अर्थ होता है जो चला गया, विच इज पास्ट। प्रेत का अर्थ होता है, सॉरी, प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया, जो पास्ट है, जो मर गया वो प्रेत है। भूत का अर्थ होता है जो बन गया, जो संस्कृत अभी भी यहां थोड़ी बहुत पढ़े हुए हैं उनको पता है भू धातु का मतलब टू बिकम, कृत प्रत्यय लगता है, भूत का मतलब होना, जो हो गया वो भूत है। आप हम सब भूत हैं, मैं भी भूत हूं, आप ही भूत हूं। जब भी आप गीता पढ़ी, आप उपनिषद वेद वगैरह तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर गीता तो पढ़ते हैं। गीता में आपको कम से कम 50 जगह भूत शब्द आएगा, उसका अर्थ वही है, लिविंग बींग, प्राणी या वस्तु। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये भूत प्रेत हिंदुओं में आया क्या, इसकी शास्त्र तो कहीं कोई है नहीं, किसी शास्त्र में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, पर हम मानते। इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा मानना है कि भूत या प्रेत का मत, प्रेत का मतलब जो मर गया, भूत का मतलब जो पैदा हो गया। इस भूत प्रेत के कारण कितना, और जो डायन वगैरह है, आप कल्पना नहीं कर सकते, हजारों महिलाएं रोज इन डायनों डायन के कारण मारी जाती हैं, हत्या कर दी जाती है। और ये किसी खास राज्य में नहीं, पूरे भारत में आज भी हम देखते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी पढ़े लिखे लोगों के घर में ये समस्या होती है, वो ये एक तरह की बीमारी है। हमारा मानना है कि जो डायन है ये महिलाओं की खास तरह की बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे दौरा पड़ता है, मुर्गी की बीमारी होती है, और डायन कह के उसको पीटा जाता है, आग में उसको, आग उसके अंदर दागा जाता है, इस तरह अत्याचार होता है। 5-7 साल पहले रोहतक में एक डॉक्टर परिवार था, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, तो बड़ा बेटा उनका बड़ा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में बहुत होशियार था, छोटा बेटा थोड़ा कम दिमाग वाला था, वो पढ़ने लिखने में तेज नहीं होता था। तो माँ बाप परेशान थे, तो उनको एक तांत्रिक मिल गया। ध्यान रखिए जो तंत्र है ना, जादू टोना, ये इस्लाम से हिंदुइज्म में आया, कैसे आया उसकी चर्चा हम करेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको समझाएंगे आराम से। तो उन्होंने एक तांत्रिक के चक्कर में फंसे, तांत्रिक ने कहा कि घर में आप खास तरह के हवन करिए, और बड़े बेटे का खून छोटे बेटे में अगर खास हवन प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाया जाए तो दोनों की बुद्धि बराबर हो जाएगी, क्योंकि खून चढ़ाने के लिए, यह अखबार में छपा था, खून चढ़ाने के लिए आपको वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भाई वो उसका ग्रुप मिलता है कि नहीं, और भी बहुत कुछ मिलता है कि नहीं, पर वो मिला नहीं, और वो हॉस्पिटल में करा नहीं सकते क्योंकि ये गलत होगा। तो क्योंकि दोनों डॉक्टर डॉक्टरानी थी, तो अपने घर पर सारे इंतजाम कर दिया खून निकालने का, और वो तांत्रिक बाबा आया घर में, जो भी पूजा पाठ करने के बाद वो खून चढ़ाया, और उसी दिन दोनों बेटे मर गए, दोनों बेटे मर गए। पुलिस केस बना, मतलब पता चला, पुलिस केस बना, धीरे धीरे छानबीन हुई, पता चला कि तांत्रिक के कहने पर डॉक्टर परिवार ने ऐसा किया था। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कितने धर्म के नाम पर अंधे हो सकते हैं। भूत प्रेत डायनों ने हिंदुइज्म को बहुत खराब खा गया, बाकी किसी व्यक्ति को डराया ना डराया, हिंदू तो बिल्कुल डर गया हिंदू से। भूत प्रेत से। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि ये भूत प्रेत ये सिर्फ जो शरीर मरा हुआ शरीर प्रेत है, जो पैदा होता है वो भूत है। स्वामी जी का मानना था कि जो जाति प्रथा है वो वर्ण व्यवस्था के नाम पर, हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, मतलब व्यक्ति अपने कर्मों से गुणों से, जो आप गीता में भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी समस्या क्या है कि आर्य समाज शास्त्रों के आधार पर जो मान्य है उसी को मानता है, आम हिंदू शास्त्र से दूर पंडितों के कहने पर मानता है। जब आप गीता पढ़ेंगे 18वां अध्याय देखेंगे तो कृष्ण लिखते हैं चातुर्वर्णियम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग श, मैंने चार वर्ण बनाया गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। आर्य समाज उसी गीता के सिद्धांत को मानता है कि जाति मतलब पैदा होते ही मैं बनिया बन गया, ब्राह्मण बन गया, खत्री बन गया, मैं शूद्र बन गया, ये गलत है, ये इंसान पर अत्याचार है, जुल्म है, ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि आप किसी इंसान को उसकी पैदा होने के कारण बड़ा समझते हो या छोटा समझते हो, इससे ज्यादा घटिया सोच दुनिया में हो ही नहीं सकता। अंबेडकर भी छोटे घर में पैदा हुआ, छोटे जात में, पर वो संविधान लिखा, उन ब्राह्मणों के 100 गालियां देने के बावजूद भी वो ब्राह्मणों से बड़ा विद्वान बना। और आपको करोड़ों ब्राह्मण घर के बच्चे मिलेंगे जो चाय धोते हुए मिलेंगे, जिनको गायत्री मंत्र तक नहीं आता। और वो मुर्गा तो छोड़िए, वो दुनिया में ऐसे कोई चार पाई तीन पाई प्राणी नहीं जिसको ना निगल जाते होंगे, ऐसे ब्राह्मण भी आपको मिलेंगे। तो ये बड़ा घटिया सोच है कि कोई पैदाइशी ब्राह्मण होगा, ये स्वामी जी का विचार नहीं है, मैं आपके सामने, घटियापन तो मेरा अपना शब्द है, स्वामी जी पर मत जाइए, वो आप मुझे कहेंगे क्यों घटिया बोला, मैं आपसे लड़ूंगा। मतलब ये पढ़े लिखा लोग अगर अपने आप को किसी जाति से जोड़ता है, मुझे लगता है सचमुच अंदर से वो बड़ा बड़ा कटु शब्द नहीं बोलूंगा पर बहुत ही अंधेरे में है। भारत के नीचे गिरने का यह भी एक कारण है कि आप किसी जाति के आधार पर किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। आज भी झारखंड में, ये अखबारों के मैं बात कर रहा हूं, एक गांव में कहीं, वहां आज भी क्या है कि जो जो बड़े जात की बस्ती है उसके बगल में छोटे जात की बस्ती है, तो जो बस्ती वाले जब मेन रोड पर जाएंगे वो बड़े जात के रास्ते से ही गुजर के जाएंगे गांव से, तो उनका नियम है कि जो बड़े जात की जो बस्ती है उसके रास्ते से जब जाएं तो चप्पल साइकिल वगैरह कुछ नहीं यूज कर सकते, वैसे तो गरीब है उनके पास था नहीं, अब जो थोड़ी बहुत कमाया फमा करके कुछ चप्पल पहना साइकिल पहना तो उसके पैर काट देते थे। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने वहां साइकिल चला के थोड़ा हिम्मत करके, एक लड़का, काफी दयालु से तो कोई चलाता नहीं था, साइकिल खरीदा, पढ़ा लिखा, 10वीं पास कर लिया किसी तरह, उसको लगा कि मैं, क्योंकि पढ़ने लिखने से थोड़ा स्वाभिमान सेल्फ एस्टीम आता है, तो मैं जाऊंगा, वो साइकिल चला कर गया, साइकिल चला के गया तो उसको मार दिया गया और दंगा हुआ, और वो इतने बड़े पुलिस केस और अखबारों में आया। और उसका मूल कारण था कि छोटे जात की व्यक्ति को कैसे हिम्मत हुआ बड़े जात के गांव में साइकिल से चला जाए, ये 2000 शताब्दी की कथा है। ये सब मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको पता चले स्वामी दयानंद जी का एक्चुअली क्या योगदान है। आज भी हिंदू किस बुरी हालत में है, व्यक्ति अपने कर्मों से गुणों से स्वभाव से, वर्ण, वर्ण का मतलब होता है टू चूज, चुनना, जो ज्ञान पढ़ना पढ़ाना कर्म को चुनता है वो ब्राह्मण है, जो युद्ध करना लड़ाई करना या शक्ति को चुनता है वो क्षत्रिय है, जैसे आजकल आप कहेंगे पुलिस आर्मी वगैरह में जो लोग काम करते हैं, जो धन कमाने को महत्व देता है वो वैश्य है, जिसके लिए आप कितने खेती व्यापार वाणिज्य बिजनेस गाय पालना वगैरह, ये मेरा शब्द नहीं है, गीता का शब्द है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्यों का कर्म है जो धन उपार्जन पर जोर देते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ना व्यापार करना आता है, ना पढ़ना लिखना आता है, ना जो ताकतवर है, नेचुरली जो दसवीं फेल होगा वो चपरासी का काम, वो मजदूरी का लेबर वर्ग जिसको आप कहेंगे, वो सेवा वर्ग है। आप प्रोफेसर हैं पर आपका बेटा अगर नालायक है तो वो लेबर बनेगा, तो आप ब्राह्मण है आपका बेटा शूद्र, यही परंपरा थी। आप अगर पुराने इतिहास को देखेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब छोटे जात के, आपके वाल्मीकि वो डाकू थे, जावाली ऋषि उनकी उनकी मां वेश्या थी, ऐतरेय तैतरेय जिन्होंने उपनिषद लिखा उनकी उनका वो परिवार शूद्र परिवार से आए पर ऋषि बने। ऐसे बड़े सारे ऋषि मुनि है जो 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 जो, जो, जो के परिवार के बच्चे हैं जो शूद्र बने, ये परंपरा थी। जैसे दुनिया में किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, किसी भी एनलाइटेंड सोसाइटी में जो रूल्स है कि ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बना तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा, वो कुछ भी बन सकता है, वो हो सकता है नालायक भी होगा, ये नहीं कि वो भी डॉक्टर कहलाएगा। आर्य समाज मानता है जन्म से जाति मानना इंसानों पर जुल्म है, इंसान को उसके कर्म से जाना जाए, उसके गुण से जाना जाए, उसके स्वभाव से जाना जाए, उसके जन्म से नहीं जाना जाना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं वो किस जात में पैदा हुआ। और एक लास्ट में दो तीन बातें करके हम आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज का जो नियम है, जो आपका लिखा हुआ है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, वो भी मैं आज जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। आर्य समाज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। Of all true knowledge and whatever is known from knowledge, the primary cause is the highest Lord. The second rule, God is existent, intelligent and blissful. He is formless, omnipotent, just, kind, unborn, endless, unchangeable, beginningless, unequaled, the support of all, the master of all, fearless, eternal, holy, and the creator of the universe. He alone is worthy of worship. ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं creator of the universe, तो जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं, सो कल्ड जो बाबाओं को हम भगवान मानते हैं, वो एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सकते, दुनिया तो पैदा करना दूर की बात है, पर हम उनको भगवान मान बैठते हैं, कितने बाबा लोगों को। इसी से वो बाबाओं को तो मैं कोई दोष नहीं दूंगा, वो तो ठीक है, वो अपना जो भी 420 करते हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं, भगवान उनके साथ क्या करेगा और वो खुद कितने अज्ञान में है, ये डिफरेंसेस है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर कौन है जो समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला, सूरज भी उसने बनाया, पानी भी उसने बनाया, और जिनको आप सो कॉल्ड ये इंसानों को भगवान मानते हैं, गुरुओं को, बाबाओं को, वो एक पत्थर भी नहीं बना सकते, एक रेत भी नहीं बना सकते सिवाय पैसा कमाने का। पैसा बना नहीं सकते, पैसा कमा सकते हैं, आप भी कमाते हैं, वो भी कमाता है, पर आप उनको भगवान कहते हैं इसीलिए वो कमाते हैं, आप उनके चेले बनते हैं और दूसरे जगह मजदूरी करके कमाते हैं। द वेदाज आर द बुक्स ऑफ द ऑल ट्रू नॉलेज, इट इज द पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ ऑल आर्यस, आजकल जिसको हम हिंदू कहते हैं, टू रीड देम, टू टीच देम, टू हियर देम एंड टू प्रीच देम। वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ एंड गिव अप अनट्रूथ, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है हमने आज तक सुना नहीं था, पर सच सच होता है, और साइंस में आप देखते हैं ये कि काफी सालों तक एक्सेप्ट नहीं होता है पर करना पड़ता है। एवरीथिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू धर्म, दैट इज आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज अनट्रूथ। द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्य समाज इज टू डू गुड टू द वर्ल्ड, टू प्रमोट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशियल गुड ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। द सेवेंथ, वी शुड ट्रीट ऑल विथ लव एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द धर्म, वी शुड डिस्पेल इग्नोरेंस एंड स्प्रेड नॉलेज। नाइन, वन शुडंट बी कंटेंट विथ वन्स ओन वेलफेयर एलोन, but should consider the progress of all as one's own. And 10th, everyone is bound in obeying social and all benefiting rules but is free in matters pertaining to individual well-being. आप लोगों को बहुत बहुत दिवाली की दोबारा बधाई है. हम ईश्वर से कामना करते हैं आप अपने हृदय में प्रेम की दिया जलाएं, अपने परिवार में अपने दूसरों की सेवा करने के लिए दया की दीप जलाएं, अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाएं, अपने अंदर की दिव्यता को जलाएं. और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है आप अपने अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करें, आप हर तरह के आध्यात्मिक और भौतिक सुख को प्राप्त करें. इसी के साथ विराम करते हैं और शांति पाठ और आरती. ओम शांति.